اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔
آپ کو پتا ہے کہ یسوع کی تمثیلیں بہت ہی شاندار ہیں، یہ کہانیاں ہیں، لیکن یہ انجیل کو اس مقام پر لے آتی ہے جہاں ہم مکمل طور پر اسے سمجھ سکیں۔ مجھے وہ باتیں پسند نہیں جو سننے میں تو روحانی ہوں لیکن سر پہ سے گزر جائیں اور واپس جاتے ہوئے لگے کہ زبردست تھا لیکن پتا نہ ہو کہ وہ تھا کیا۔ آمین۔ میں ان باتوں کو لے کے جانا چاہتی ہوں جو سمجھ آئیں اور یاد رہیں۔ سو اگر کل شام آپ یہاں تھے تو آپ میں سے بہت سو کو یاد ہوگا کہ میں اپنی زندگی میں غلط سے زیادہ صحیح کام کروں گی۔ مطلب آپ میں سے کتنے اتفاق کرتے ہیں، اگر آپ کل رات یہاں تھے کتنوں کو یہ بات یاد ہے آپ احساس جرم کی یہ نہیں بنے۔ اوکے، وقت نہیں کہ ہم کل رات کی دہرائی کریں، ہم متی 24ویں باب سے شروع کریں گے جو کہ بائبل کا وہ باب ہے جو آخری وقت کے نشانات کے متعلق ہے۔ جانتے ہیں، سب جاننا چاہتے ہیں یسوع کب واپس آ رہا ہے۔ اس نے اس مقصد کے تحت ہمیں نہیں بنایا کہ ہم ہر دن کو اس کی واپسی کا دن سمجھ کر جیئیں۔ سو میں اس بات سے شروع کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو یا مجھے واقعتاً پتا ہو کہ آج سے 3 ہفتے بعد اتوار کے دن صبح 10 بجے یسوع واپس آئے گا، تو شاید میرا سوال یہ ہو کہ آپ اپنی زندگی میں کیا بدلیں گے۔ سچائی سے کہوں تو ہمارا جواب ہونا چاہیے کہ کچھ نہیں، میں وہی کر رہی ہوں جو حساب سے خدا کی مرضی ہے، اور مجھے بھگدڑ مچا کر اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں کہ یسوع آ رہا ہے، اور مقصد اس انداز سے جینا ہے کہ یسوع کسی بھی لمحے واپس آ جائے گا۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، ہمارے پاس اس وقت کرنے کو ایک بڑا کام ہے۔ دنیا ایک بڑی خوفناک مصیبت میں ہے، اور سچ کہوں تو لوگوں کا بمپر اسٹیکر ان کے لیے کچھ کر نہیں پائے گا۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو لگا بھی سکتے ہیں، لیکن اس میں کسی غیر ایماندار کے لیے کوئی بھی کشش نہیں، اور نہ کسی ایماندار کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم بھائی ہیں۔ لیکن صرف ایک بات جو واقعتاً دنیا کو قائل کر سکتی ہے کہ یسوع سچائی ہے، اگر ہم یسوع جیسا عمل بھی کریں، اگر ہم اسے اپنے اندر سے ظاہر ہونے دیں۔ اور اس کے لیے تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ذہن سے اتار کر ذہن کو اس کام پر لگایا جائے جو خدا آپ سے کروانا چاہتا ہے۔ سو متی 24 میں آخری وقت کے نشانات کی ایک لمبی فہرست درج ہے، اور ان میں سے بہت سارے تو گزر بھی چکے ہیں۔ میں کہوں گی کہ بہت سارے گزر چکے ہیں، سو ظاہر ہے ہم قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی جانتا نہیں کہ وہ وقت کیا ہے، لیکن ہم اس وقت کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور 42ویں آیت پر پہنچ کر وہ کہتا ہے، بس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا، لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگانے دیتا۔ اس لیے تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ بس وہ دیانتدار اور عقل مند نوکر کون ہے جسے مالک نے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کیا تاکہ وقت پر ان کو کھانا دے؟ مبارک ہے وہ نوکر جسے اس کا مالک آ کر ایسا ہی کرتا پائے۔ لہذا سو ہمیں تیار ہی رہ کر جینا ہے، نہ کہ جلدی جلدی تیار ہونا ہے۔ آمین۔ ہر کچھ دیر بعد ہمیں یہ سننے کی ضرورت ہے کیونکہ یسوع پھر آنے والا ہے، وہ پھر سے آنے والا ہے، اور ہمیں چاہیے، اور میرا ایمان ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایسی زندگی گزاریں جس سے یسوع کو جلال ملے اور لوگوں کو بتا سکیں کہ یسوع کیسا ہے۔ और ये करने के लिए, अब जरा गौर से सुने, आप काहिल नहीं हो सकते, आप सुस्त नहीं हो सकते, लापरवाह नहीं हो सकते, मुतमईन नहीं हो सकते, और आप टाल मटोल नहीं कर सकते। क्या आज सुबह यहां कोई टाल मटोल करने वाला मौजूद है? यह पैगाम आपको आपकी जगह पर मरोड़ कर रख देगा। आपको पहले बताना अच्छा है, मैं आपको घर के लिए एक असाइनमेंट देकर भेजूंगी। सुमती 25 बाब में 3 तमसीलें हैं, जो कि जाहिर है 24 के फौरन बाद है। 24 बाब में आपको आखिरी वक्त के तमाम निशानात मिलते हैं, और फिर वो 3 तमसीलें सुनाता है। पहली 10 कवारियों की तमसील है, और यकीनन इसी एक को हम आज सुबह सामने रखेंगे, और फिर आज दोपहर हम तोड़ों वाली तमसील को देखेंगे, और भेड़ और बकरी की तमसील को। मेरा ख्याल है ये मेरी पसंदीदा तमसीलों में से एक है, और इसमें हमारे लिए बड़ा गहरा पैगाम है, जिसमें यसू ने भेड़ों और बकरियों के मुतालिक कहा है। मत्ती 25:1-4। उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कवारियों की मानिंद होगी, जो अपनी मशले लेकर दूल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ और 5 अकलमंद थी। आप जानते हैं कि हमारे पास हमेशा आजाद मर्जी होती है। पता है आजाद होने का मजा क्या है? खुदा कभी हमसे कुछ नहीं करवाता, वो सही काम हमारे कान से हमें पकड़ कर नहीं करवाता, बल्कि वो हमें सिखाता है कि गलत काम ना करें। लेकिन बात यह है कि यह हमारी मर्जी है, और ये उन बड़ी वजूहात में से एक है कि अगर सच्चाई से लें तो हम औरों को अपनी मुश्किलात का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ना ठहराना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे वालिद ने मेरे साथ ज्यादती की, और मेरी माँ ने इसके लिए कुछ ना किया, क्योंकि वो उससे डरती थी, और मैं तबाह हो गई। लेकिन मेरे पास रास्ता था। जब मैं मसीही बनी तो मैंने जाना कि मेरे पास रास्ते हैं। बहुत सालों तक मैं अपनी उस तबीयत का जिम्मेदार माजी की ज्यादती को ठहराती रही, और खुदा ने एक दिन मेरे दिल में डाला कि तेरी तबीयत की ऐसी एक वजह है, लेकिन उसको इस अंदाज में जीने का बहाना ना बनने दे। जी हां, क्या किसी को आज यहां इसकी जरूरत है? बात यह है, दुखी हम सभी हुए, हम सबके साथ बुरा सलूक हुआ, हम सबके साथ ना इंसाफी हुई, लेकिन हमें इन बातों को भुलाकर आगे बढ़ना है। अगर कोई ऐसा है जिसे आप जानते हैं कि आपको उसे माफ करने की जरूरत है, तो इसमें एक लम्हे की भी ताखीर ना करें। मेरे ख्याल से हमारे चर्च में आज बड़ी मुश्किलात में से एक मुश्किल गुसीले मसीही हैं, और ये बड़ी रुकावट है। यसु ने कहा, अगर तुम दूसरों के गुनाह माफ नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे गुनाह माफ नहीं करूंगा। ये तो बड़ी बात है। जी, ये कवारियां दुल्हा के इस्तकबाल और दीगर रसूमात के लिए होती थी, और शादी उस वक्त आज से काफी मुख्तलिफ हुआ करती थी। 7 दिन का जश्न हरगिज कोई ताज्जुब की बात नहीं होती थी, और शादी में सब लोग शरीक होते थे, और तब दुल्हे के वालदैन को, दुल्हन के घर वालों को दुल्हन की कीमत यानी कुछ पैसे अदा करने होते। पता नहीं ये उस लड़की की कीमत थी या क्या था। मेरे ख्याल से तो मर्द को कुछ अदा करना चाहिए था, ना कि औरत को। लेकिन दुल्हन सजी हुई और तैयार होती, और दुल्हन की सहेलियों को भी सजी और तैयार रहना होता, लेकिन मसला यह था कि उन्हें यह अंदाजा हरगिज ना होता कि उन्हें कब तक इंतजार करना होगा, जैसे आज होता है कि अगर शादी 10 बजे है तो आप तवक्को करते हैं कि दुल्हन ठीक 10 बजे सामने मौजूद हो, लेकिन वो शायद सुबह 10 बजे पहुंचते हो। और बहुत बार ऐसा होता कि दूल्हा के घर वाले दुल्हन के घर वालों को बस पैगाम ही भेज रहे होते, और वो सब इंतजार पर इंतजार ही किए जाते। उन्हें ये यकीन होता कि वो आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी पता ना होता कि कब, लेकिन उन्हें यही ताकीद की जाती कि तैयार रहें। आमीन। सो हम उन कवारियों की मानिंद है जो दुल्हा का इंतजार कर रही हैं कि वो दुल्हन को लेने आएगा, और हमें अकलमंद और समझदार बनना है, ना कि बेवकूफ। मैं आपके लिए मिसाल 1 की 20 से 21 पढ़ना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से ये कमाल है। मिसाल 1 20वीं आयत। हिकमत कूचा में जोर से पुकारती है, वो रास्तों में अपनी आवाज बुलंद करती है, वो पुर हुजूम बाजार में चिल्लाती है। मेरे ख्याल से ये दिलचस्प है, क्योंकि पता है पैगाम क्या है? आपकी जिंदगी के हर मोड़ पर, हर चौखट, हर हिस्से पर हिकमत खड़ी चिल्ला रही है कि आओ मेरी बात सुनो। मेरे ख्याल से हिकमत एक मुकद्दस समझ है। मुकद्दस समझ। और क्या आप जानते हैं, अगर हम किसी माफूकुल फितरत चीज को तलाश करने के बजाय फहम को इस्तेमाल करें, सिर्फ अकल का सहारा लें, और मेरा ईमान है कि आप आज हिकमत को अपनाएंगे और कल उससे खुश होंगे। आप इसे समझें, आज आप हिकमत को अपनाएंगे और कल उससे खुश होंगे। अगर रात को मेरे सामने गंदे बर्तनों का एक सिंक पड़ा हुआ है और मैं सोचती हूं मुझे इसे धो लेना चाहिए, लेकिन सोचती हूं कल करूंगी, तो सुबह उठते ही पहली चीज जो मेरे सामने आएगी वो गंदे बर्तनों से भरा सिंक होगा। सो मैंने अपने बदन की बात मानी, लेकिन वो हिकमत की बात नहीं मानी। अब बर्तनों को ना धोने से मेरी निजात पर कोई आंच नहीं आती, लेकिन हम खुशी से जीने पर बात कर रहे हैं। मैं कह रही हूं, कई बार आपको पता है कि कुछ लोग बदबूएं निकालने की कोशिश करते हैं और अपने गंदे बर्तनों पर उनका बस नहीं चलता। मेरे ख्याल से शुरुआत हमें घर से करनी चाहिए, जहां जरूरत है। आमीन। पुख्ता और तैयार रहें। अब ये कैसे पता चलेगा कि उन 5 के साथ जो बेवकूफ थी क्या मसला था? तीसरी आयत में लिखा है, जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मशालें तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया। एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है इजाफी तेल, क्या बात है। दूसरे लफ्जों में, बेवकूफ लोग बस उतना ही करते हैं जिससे बस उनका गुजारा चल जाए, वो बिल्कुल भी कुछ इजाफी नहीं करते। देखें, अगर आप समझदार हैं तो अगरचे आपकी जिंदगी फिलहाल मजे से गुजर रही है, तो भी आपको हर सुबह जरा जल्दी उठकर खुदा के साथ कुछ वक्त गुजारना है, क्योंकि आपको उस इजाफी तेल की जरूरत है। आमीन। और पता है, कुछ लोगों के पास वक्त नहीं होता जब वो सुबह उठते हैं। शायद वो चंद मिनट निकाल भी पाए, लेकिन उनके पास वक्त नहीं होता। उनके बच्चे होते हैं, उनको छोड़ना होता है, फिर उन्हें काम पे जाना होता है। पता है मेरे शौहर ने क्या किया? वो काफी अरसे से इंजीनियरिंग के शोबे में थे, जबकि मैं पहले ही मिनिस्ट्री में जा चुकी थी, और हम जानते थे कि एक दिन उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी और मिनिस्ट्री में आना पड़ेगा, लेकिन उस वक्त हालात इजाजत नहीं देते थे। और हर रोज डेव लंच करने के बाद बाकी के घंटे पड़ोस में टहलने और दुआ करने में गुजारते, और उन्हीं दिनों में खुदा ने उन्हें बताया कि वो उस जगह से अपनी नौकरी को छोड़कर चले जाएंगे। और आप जानते हैं कि तकरीबन ये 7 साल में हुआ है ना, और उन्होंने काम पे चंद लोगों को भी बता रखा था कि 7 साल के अंदर मैं चला जाऊंगा और मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में काम करूंगा। देखें, अगर आप खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं तो खुदा आपसे बात करता है और वो बातें आप पर जाहिर करता है जिनकी जरूरत होती है। देखें, लंच के वक्त में खुदा के साथ वक्त गुजारना बेहतर है, बजाय इसके कि आप लंच रूम में बैठकर बाकी लोगों के साथ ऐप जोई करें या काम के बुरे हालात का तस्करा करें। बेहतर है कि अपने पड़ोस में जाकर वॉक करें, दुआ और शुक्रगुजारी करें। जी, मैं संडे को चर्च जाती हूं, ठीक है, लेकिन आप कुछ इजाफी भी कर सकते हैं। जी हाँ, क्या आप सुन रहे हैं? आप कुछ ना कुछ इजाफी कर सकते हैं। जी, मैं पिछली सर्विस में यहाँ मौजूद थी और मैंने अपनी बारी पर आज सुबह ये भी डाला। मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने कल रात भी दिया। देखें, बाकी सब ने भी दिया। मैंने कल रात दिया और फिर यहां हूं। मैं अपने तोहफे में से देने की बात कर रही हूँ। सो यही आपको देने की जरूरत नहीं, अच्छी बात है, मैंने कल रात दिया, दोबारा देने की जरूरत नहीं। लेकिन आप कुछ इजाफी कर सकते हैं। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मशालें तो ले ली मगर इजाफी तेल अपने साथ ना लिया। देखें, उन्होंने देर सवेर के लिए कोई मंसूबा ना बनाया। अब यहाँ कुछ लोग समझेंगे, आप में से कितने लोग बहुत सी जगहों पर अक्सर औकात ही देर से जाते हैं। जी आए, जरा दिलेरी से बात करें। पता है क्यों? क्योंकि आप देर सवेर होने का नहीं सोचते। घर से निकलने से पहले बहुत सारे काम हैं जो आप करना चाहते हैं। कुछ लोग बड़े नफीस होते हैं, वो अपने घर को चमकाए बिना नहीं छोड़ते। लेकिन मैं आपको कुछ बताती हूं, मैं तल नहीं हो रही, लेकिन मैं बस आपकी मदद कर रही हूं। दरअसल इंसान होते हुए देर सवेर हो जाती है, लेकिन अगर आप देर करने के आदी हैं तो आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये तल और नाकाबिले कबूल है। और देखे, कभी कभार ये लोमड़ी बच्चे पाकिस्तान को तबाह करते हैं। यही छोटी छोटी गलतियां हमारे लिए बड़ा मसला खड़ा करती है। तो मैं आपसे ये कहूंगी कि जब आप घर जाए तो आप बस यहां सिर्फ ये देखने ना आए कि हम जमा होकर कैसे लगते हैं। मैं जानती हूं कि आप में से कुछ लोग यहाँ जॉय की खातिर आए हैं, लेकिन ये वीकेंड मेरा है। सो मैं चाहती हूँ आप कुछ लेकर जाए। सो मैं चाहती हूँ कि आज आपकी जिंदगी के सुपुर्द कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप फैसला करें। देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है अगर हम चर्च में किसी बात का फैसला करते हैं। सो मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ कि घर जाए और जाकर कुछ इजाफी करना शुरू करें। कुछ भी हो, कुछ ना कुछ इजाफी करना शुरू करें। मैंने पिछले हफ्ते से ये सब करना शुरू किया और मैंने सोचा मैं कुछ ऐसा करूंगी कि इसकी मशक हो। तो जब कभी भी मैं कोई चीज निकाल कर इस्तेमाल करती हूं तो काम खत्म करके उसे अपनी जगह पर रखती हूं। मैं जब बर्तनों को देखती हूं कि उन्हें धुलाई की जरूरत है, मैं धो देती हूँ। उस दिन जुम्मे की सुबह मेरा वर्जिश करने का जी नहीं चाह रहा था। मेरे यहाँ हफ्ते में 3 बार ट्रेनर आता है और उस दिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि मैं कल छुट्टी करूंगी। अगर आज मैं करूं तो मैं 2 दिन लगातार छुट्टी नहीं करना चाहती थी। मैं तैयार थी कि अपने ट्रेनर को फोन पर कह दूं कि आज मेरा जी नहीं है कि वर्जिश करूं, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं करूंगी। देखें, ये फैसला करने की बात है। और पता है, अगर कभी कभार आपको मेहनत करनी पड़े तो इतनी तकलीफ नहीं होती। जी हाँ, अगर आपको सही काम के लिए जरा मेहनत करनी पड़े। मैंने अपने प्रोग्राम में कुछ माह पहले एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाया था। उसने कहा कि आज लोग इस कदर आराम पसंद हो चुके हैं कि अगर जरा सी मुश्किल उन पर आ पड़े तो वो बहुत ही गहरे सदमे का शिकार हो जाते हैं, उन बातों पर भी जो कि इंतहाई मामूली नौयत की होती हैं। हमें जिंदगी में जरा मुश्किल चीजों की जरूरत है। आमीन। आप में से कितने लोगों को अपनी अलमारी साफ करने की जरूरत है? क्या वो तमाम चीजें कचरा नहीं जो हमने जमा कर रखी हैं? बहनों, आपके पास बालियों की कितनी जोड़ी है जो आप नहीं पहनती, बस अच्छी लगी आपने खरीद ली और बस अब कपड़ों का ही इंतजार हो रहा है। और मुझे पता है, मेरे पास जूते हैं जो मैंने कभी नहीं पहने। मैं कभी कुछ पहन लेती हूँ, डेव पूछते हो ये तुमने कब खरीदा, मैंने कहा यही 1 साल पहले। सो मुझे उसको रोजमर्रा के हिसाब से करने की और चीजों को दे देने की जरूरत है। तो अगर सारी अलमारी को आप एक ही साथ साफ नहीं कर सकते तो कह लें 15 मिनट हर रोज मैं अपनी अलमारी साफ करूंगी। जरूरत पड़े तो टाइमर लगा लें, 15 मिनट रोज इसको दें और जल्द आप देखेंगे कि ये काम हो जाएगा। आप में से कितने जानते हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता सुस्ती काहली की गर्द आप पर जमती जाती है? और देखें, जितना कम काम आप करना चाहते हैं उतना ही कम काम आप करते रहते हैं, और हम ऐसे नहीं जी सकते। सो आज का ये पैगाम कहता है, ऐ सोए हुए मसीही जाग। आमीन। अगर किसी भी तरह की गफलत आप पर गालिब है, अगर आप अपनी दुआया जिंदगी में पीछे रह गए हैं, अगर आप बिला नागा चर्च जाते थे और अब आप अपने सोफे पर आराम से बैठकर घर पर ही चर्च को देखते हैं। मुझे खुशी उन लोगों के लिए जो चर्च नहीं आ सकते उससे आसानी है, लेकिन ये ऐसा बहाना नहीं बनना चाहिए कि आप कोई जहमत ही गवारा ना करें, क्योंकि शायद ये आपके लिए अच्छा हो लेकिन उन लोगों का क्या जिन्हें चर्च में आपकी जरूरत है। देखिए, ये मसला हमारा है क्योंकि हम बरकत लेने जाते हैं और हमें बाबरकत होने के लिए जाना चाहिए। अपने रवैये को बदलें। मैं आज वहां जाऊंगी और मैं जाते वक्त रास्ते में पास्टर के लिए दुआ करूंगी और मैं वहां ऐसे लोगों को ढूंढूंगी जिन्हें किसी बरकत की जरूरत है और वहां से निकलने से पहले मैं किसी के लिए बाई से बरकत बनूंगी। सुने, अगर हम औरों के बारे में ज्यादा और अपने बारे में कम सोचेंगे तो हम ज्यादा खुश रहेंगे। क्यों? देखें, उन बेवकूफ कवारियों को ये कुछ भी इजाफी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो अकलमंद थी उन्होंने कुप्पियों में तेल भी साथ रखा। और मैं सोच रही हूँ कि ये जरा मुश्किल होगा, क्योंकि मतलब ये है कि उन्हें एक हाथ में मशल और फिर दूसरे में ये कुप्पियां उठाना होंगी। हिकमत सबके अंदर है, मगर अगर हम चाहें तो उसका इस्तेमाल ना भी करें। एक पैगाम जो आज मैं आपको देना चाहती हूँ वो चार हुरूफ पर मबनी छोटा सा लफ्ज है, अभी। अभी करना शुरू करें जो करने की आपको जरूरत है और बाद अज़ां आप खुशी मनाएंगे, या फिर आप उसे नजरअंदाज करके अपने बदन को खुशी दे सकते हैं और बाद में दुख, या फिर आप रूह की रहनुमाई लेकर वो कर भी सकते हैं जो वो आपको अभी करने को कहे और उसके बाद आने वाली आजादी को महसूस कर सकते हैं। आप में से कितने हैं जो 50 या 60 साल के हैं और ये आरजू करते हैं कि जब 20 बरस के थे तो काश हर तनख्वाह में से अपनी इस उम्र के लिए कुछ ना कुछ पैसे बचा लिए होते अपनी जिंदगी में। देखें, अब इसमें क्या फर्क पड़ेगा अगर हम आज ये करें। ओह, लेकिन हम आज वो करना चाहते हैं जो दिल को अच्छा लगे, वो करना चाहते हैं जो आसान लगे। और बस छोड़ो कल की फिक्र को, लेकिन देखें कल को तो आना होता है। इस लम्हे या उस लम्हे जो हमने किया उसके नताइज को तो भुगतना है। अकलमंद लोग अपनी तमाम तर मेहनत, सबर, बर्दाश्त और कुर्बानी से कीमत अदा करते हैं और बाद अज़ां उन्हें इसका फल मिलता है। क्या किसी को मुस्तकबिल की फिक्र है? उसे आना है, वो आएगा। अगर आप अकलमंद हैं तो आप 20 या 30 साल की उम्र में वर्जिश करना शुरू कर देंगे, मेरी उम्र में पहुंचने का इंतजार नहीं करेंगे। आमीन। मैंने 62 साल की होने से पहले वर्जिश शुरू नहीं की, मुझे लगता था ये मेरी जान ले लेगा। बिल्कुल मेरा मतलब, मुझे टॉयलेट में जाके गिरना पड़ता और फिर उठने के लिए दुआ करनी पड़ती। क्या आप कभी इतना सूझे हैं? इतना सूझ जाना। एक दिन मैं बोट में अपनी टांगों को टेक दिए हुए बैठी थी और मैंने टांग के पीछे से खुजाया और मुझे ऐसा लगा कि कोई गिल्टी है। मैंने कहा, ये क्या है? और फिर मैंने उस तरफ भी वही महसूस किया कि यहां भी है। फिर मुझे पता लगा कि ये मसल्स हैं। आप में से कुछ को मेहनत करनी पड़ेगी इन गिल्टियों के लिए। ओ, आपको लगता है मैं मजाइया हूं? मैं आती हूं वहां। जरा इस बात का अंदाजा करें, मेरे शौहर पता नहीं क्यों 60 साल से वर्जिश कर रहे हैं। बेशक आज भी उसी साइज के कपड़े पहनते हैं जो शादी के वक्त पहना करते थे। लगता है कि वो 60 साल के, लेकिन वो इस महीने के आखिर में 79 के हो जाएंगे। वाओ! और वो बहुत ही ज्यादा खूबरू और मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन देखें उन्होंने इस बात की कीमत अदा की है। मैं चाहती हूँ कि अब आप इस बात को गौर से सुने। क्या कोई मुस्तकबिल में इख्तियारात पाने के लिए आज कीमत अदा करने के लिए तैयार है? तो फिर आपको एक नए लफ्ज की जरूरत है अभी। आप जानते हैं कि अभी वक्त है कि आप वो करें जो बेहतर है। ये बिल्कुल ना कहें कि बाद में कर लेंगे, बल्कि अभी करें।